बातें क्लास चल रहा था 12-4-68 पहले पेज के मध्य भाग में बात चल रही थी। ऐसे नहीं है कि आने से ही बहुत बच्चे अडाप्ट हो जाते हैं, नहीं, थोड़े थोड़े अडाप्ट होते जाते हैं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म और चंद्रवंश के थे, फिर उन्हों की ही बैटरी चार्ज होती है। जो अडाप्ट होते जाते हैं, तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज जरूर होनी है। ऐसे भी नहीं सुबह को यहां आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो जाएगी, नहीं, बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते फिरते भी हो सकती है, और वो भी याद में रहने से हो सकती है। तुम पहले पहले पवित्र आत्मा सत्व प्रधान थे, तुम्हारा सच्चा सोना था और सच्चा जीवर था। अभी तुम तमो प्रधान बने हो, अभी फिर आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। ये तो बड़ी सहज बात है पवित्र होने के लिए, और इसको योग की भट्टी भी कह सकते हैं। सोने को भट्टी में डालते हैं ना, तो ये है सोने को शुद्ध बनाने की भट्टी। बाप को याद करने की भट्टी को याद रखना है, क्योंकि पवित्र तो बनना ही है। याद नहीं करेंगे तो उतना पवित्र नहीं बनेंगे। फिर हिसाब किताब चुक तू करना पड़ेगा, क्योंकि अब कयामत का समय है, सभी को हिसाब किताब चुकतू करके वापस घर जाना है। बुद्धि में घर की याद बैठी हुई है, और किसी की तो बुद्धि में याद नहीं होगी सिवाय तुम्हारे। और किसी की बुद्धि में याद क्यों नहीं होगी सिवाय तुम्हारे? है, क्योंकि वो तो ब्रह्मा को ही ईश्वर समझ लेते हैं। कौन? ब्रह्मा को ईश्वर कौन समझ लेते हैं? वह तो तुम नहीं समझते हो ब्रह्मा को ईश्वर। वह किसके लिए बोला है? उन बेसिक वाले ब्राह्मणों के लिए बोला, जो समझते हैं गीता का भगवान कृष्ण उर्फ ब्रह्मा है, वो ही गीता का साकार भगवान था। वास्तव में ब्रह्म तो घर है, आत्माओं के रहने का स्थान है। तुम इस बेहद के ड्रामा के एक्टर्स हो, ब्रह्मा को तुम अच्छी रीति जान गए हो। बाप ने समझाया है अभी 84 का चक्र पूरा होता है, इसलिए अभी घर जाना है। आत्मा अभी पतित है इसलिए घर जाने के लिए पुकारती है कि हे बाबा पावन बनाओ, आप हमें पावन नहीं बनावेंगे तो हम घर नहीं जा सकेंगे। तो बाप ही बैठे बच्चों को ये बातें समझाते हैं, ये भी बच्चे समझ गए हैं कि सभी धर्म वाले, सारी दुनिया के धर्म वाले उनको पिता या फादर ही कहते हैं। ऐसे नहीं है कि टीचर भी कहते हैं, क्यों? सभी धर्म वाले टीचर क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सबको सन्मुख आकर के पढ़ाता ही नहीं है, सिर्फ पिता कहते हैं। यूं तो कृष्ण को भी टीचर समझ लेते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कृष्ण तो खुद ही पढ़ता था, और कृष्ण तो कब किसी का टीचर बना ही नहीं है। ऐसे भी नहीं है कि वो कृष्ण पढ़ करके फिर टीचर बना, नहीं। कृष्ण के बचपन से लेकर बड़ेपन तक की सारी 84 जन्मों की कहानी तुम बच्चे समझ गए हो। तुम्हारे सिवाय और धर्म के लोग तो कृष्ण को भगवान कह देते हैं। समझते हैं जिधर देखो उधर कृष्ण ही कृष्ण। राम के भक्त होंगे तो कहेंगे जिधर देखो राम ही राम। तो ज्ञान का सूत ही सारा मुझ गया है। अभी बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, और तुम भी अभी समझते जाते हो। 12-4-68 की वाणी का दूसरा पेज। भारत का ये प्राचीन योग और ज्ञान बहुत मशहूर है। मनुष्य तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, और ज्ञान का सागर है ही एक बाप। कृष्ण तो बच्चा बुद्धि है, राम बाप को कहा जाता है। वो तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं तो तुमको भी कहेंगे नंबरवार ज्ञान के सागर, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही कहेंगे। सागर कहें व नदी कहें, क्योंकि पानी तो फिर भी सागर से ही आता है। तो वो होती है पानी की गंगाएं, और तुम हो ज्ञान गंगाएं। तुम ज्ञान गंगाएं कैसे हो? क्योंकि पानी को मथा नहीं जाता है, पानी को मंथन करने से कुछ नहीं निकलता है। तुम ज्ञान गंगाएं हो, तुम मंथन करके नई नई बातें निकालते हो और तुम ज्ञान सागर को मथते हो। सागर मंथन का नाम बड़ा बाला है। जैसे ज्ञान गंगाएं हैं वैसे बड़ी बड़ी नहरें भी हैं। इस हालत में उनको भी ज्ञानवान ही कहेंगे। बाबा ने समझाया है यहां मेल फीमेल का प्रश्न नहीं है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, बाप के बच्चे भी ज्ञान सागर है और आत्मा ही ज्ञान सुनती है। तो आत्मिक स्थिति की बात है, मेल फीमेल की बात नहीं है। और वो ज्ञान सागर भी परमात्मा है। ये आत्मा भी उन द्वारा ही मास्टर ज्ञान सागर बनती है। गंगाएं भी न कहा जाए क्योंकि ऐसा कहने से भी मुझ हो जाती है। तो मास्टर ज्ञान सागर ही कहना ठीक है। तुम सभी बच्चे हो और बाप बच्चों को पढ़ाते हैं। यहां फीमेल की बात नहीं है, मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे आत्मा के रूप में। क्योंकि गंगाएं तो फिर भी नाला हो जाती हैं। और ये नाला अक्षर अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सागर से कनेक्शन नहीं है तो नदी नाला बन जाती है। इसलिए तुमको मास्टर ज्ञान सागर ही कहें। क्योंकि वर्षा भी तुम आत्मा ही लेते हो। देह अभिमानी तो वर्षा लेते नहीं है। इसलिए बाप अभी कहते हैं बच्चे अभी देही अभिमानी बनो और अपन को आत्मा समझो। जैसे मैं परमात्मा ज्ञान का सागर हूं, तुम भी मास्टर ज्ञान सागर के बच्चे हो। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। उनकी ड्रामा में ड्यूटी सबसे ऊंची है। जो राजा रानी होते हैं उनकी ड्यूटी सबसे ऊंची होती है ना। तो तुम्हारी ड्यूटी भी बहुत ऊंचे रखी गई है। यहाँ तुम समझते हो हम आत्माएं पढ़ती हैं, परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, तो मेल फीमेल की अलग अलग कोई बात नहीं। ये बाप कहते हैं मैं तो सभी आत्माओं को पढ़ाता हूं, देह अभिमानियों को नहीं पढ़ाता हूं। इसलिए कहते हैं अभी देही अभिमानी बनो तो सभी ब्रदर्स हो जाते। कौन हो जाते सभी ब्रदर्स है? किनको पढ़ाता हूं? आत्मा अभिमानियों को पढ़ाता हूं। ब्रदर्स को वर्षा मिलता है, सिस्टर्स को वर्षा नहीं मिलता। तो कौन हुई सिस्टर्स और कौन है ब्रदर्स? कहेंगे जिनको मैं पढ़ाता हूं वो है आत्मा आत्मा भाई भाई ब्रदर्स। रुद्रमाला के मण के हैं, परमपिता परमात्मा बाप से पढ़ाई पढ़ने वाले हैं। तो मास्टर ज्ञान सागर ही कहेंगे, बच्चे को भी मास्टर कहते हैं ना, क्योंकि बच्चे ही तो मालिक बन जाते हैं। तो बाप भी तुम बच्चों के साथ कितनी मेहनत करती हैं। अभी तुम आत्माएं ज्ञान ले जाती हो, फिर वहां प्रारब्ध चलती है, वहां तो सभी का ब्रदरली प्रेम रहता है। ये ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए। तो किसी को रिगार्ड देना और किसी को रिगार्ड न देना ऐसे नहीं है कि ये आत्मिक प्यार है। आत्मिक प्यार में तो सभी आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। भाई एक दो में भाई पने का रिगार्ड रखते हैं, क्योंकि गाया हुआ तो है। क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई? तो हिंदू मुसलमान कैसे भाई भाई है? कब हुए, किस समय का गायन है? है इस संगम युग का ही गायन है। जबकि बाप आते हैं ब्रह्मा के द्वारा, पहले पहले चार मुख्य धर्मों की चार बीज रूप आत्माएं प्रत्यक्ष होती हैं। शास्त्रों में उनका गायन है, चार सनत कुमार। जरूर चारों ही मुख्य धर्मों के बीज हैं, तब गायन होता है। तो भाई भाई कहना ठीक है। आत्मा यहां पाठ बजाने आती है और वहां परमधाम में भी भाई भाई होकर रहते हैं। घर में तो जरूर सभी भाई भाई होकर के रहेंगे, भाई बहन का चोला यहां छोड़ना पड़ता है और भाई भाई का ज्ञान भी बाप ही आकर के देते हैं। बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं और देखना भी ऐसे होता है कैसे चेहरे को या देह को नहीं देखना होता है, ब्रकुटी के मध्य में आत्मा को देखना होता है। तो तुमको यहां ब्रकुटी में ही नजर डालनी चाहिए, हम आत्मा यहां ब्रकुटी के तख्त पर बैठे हैं। ये सिंहासन अथवा काल तख्त ठहरा, इस अकाल तख्त पर बैठी हुई आत्मा को काल नहीं खा सकता। ये कब का गायन है? अकाल तख्त जिसको काल कोई खा नहीं सकता, तख्त चैतन्य है, यह जड़ है, तख्त भी शरीर है, शरीर का एक अंग है ब्रकुटी। परंतु अविनाशी तख्त तब कहा जाता है जब आत्म की स्थिति पक्की हो जाए। ऐसी आत्मा को काल भी नहीं खा सकता। कितनी संख्या होगी ऐसी आत्माओं की? है 9 लाख? नहीं, क्योंकि 9 लाख में तो 4.5 लाख शरीर छोड़ने वाली हैं। बल शरीर छोड़ करके आत्मा आत्मा भाई भाई समझने वालों के शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। तो तुम सभी के तख्त यहां ब्रकुटी के बीच में है। ये तख्त है जिस पर वो अकाल आत्मा बैठती है। कितनी समझ की बातें हैं। तो अपन को आत्मा समझना है। गर्भ के अंदर बच्चे की आत्मा जाती है तो भी प्रकृति के बीच में ही बैठती है। वो छोटा सा तख्त फिर बड़ा हो जाता है। तो बच्चों की बुद्धि में है हम आत्मा एक शरीर छोड़ फिर गर्भ में जावेंगे, फिर हम जाकर के ब्रकुटी में प्रवेश करेंगे। बाप तो तुम्हारे सभी दुखों को दूर कर देते हैं। सजाद की वहां कोई बात नहीं होती है, कोई प्रकार के दुख की बात नहीं। यहाँ इस दुनिया में तो आत्मा को गर्भ में कितनी सजा भोगनी पड़ती है। इसलिए अंजाम करती है कि अब फिर हम कब पाप नहीं करेंगे। आधा कल्प पापात्मा ही बनना होता है। अभी बाप के द्वारा तुम पावन बनते हो, ये द्वारा किसके लिए बोला है? द्वारा मीडिया को कहा जाता है। बाप द्वारा पावन बनते हो, और पावन बनाने वाला कौन है? बाप ही। तो जो पावन बनाने वाला है और पावन बनने वाले बच्चे हैं, उनके बीच में ये द्वारा अर्थात मीडिया कौन है? कि किस बाप के लिए कहा गया? तब तुम पतित से पावन बनती हो। जो बहुत दान पुण्य आदि करते हैं उनको पुण्य आत्मा कहा जाता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे ये पुण्य आत्मा है, नहीं, पवित्र आत्मा है। और वहां नई दुनिया में भी पवित्र आत्मा होंगे। हाँ, ये जरूर है कि पूर्व जन्म में दान पुण्य किया है, पवित्र आत्मा भी है तो पुण्य आत्मा भी है। यहाँ तो अपवित्र आत्मा पाप आत्मा है, तो अक्षर भी मुख से शुद्ध निकलने चाहिए, जिसका पूरा अर्थ निकले। भारत का नाम तो बहुत मशहूर है, सबसे जास्ती कौन से देश में दान पुण्य करते हैं? है? कहते हैं भारत में जितना दान पुण्य करते हैं इतना और कहां भी नहीं होता है। यहां तो तुम तन मन धन सब कुछ बाप को दे देते हो। विदेश में इसका गायन क्यों नहीं होता है? है? क्योंकि विदेश में तो बाप है आते ही नहीं है, भारत में ही बाप आते हैं। तो तुम सब कुछ बाप को दे देते हो, और तुम यहां ही सब कुछ बाप को अर्पण करते हो। ऐसे नहीं कि नई दुनिया में जाके अर्पण करेंगे, क्योंकि इतना दान करना तो कोई जानता ही नहीं है। दान लेने वाला और दान देने वाला भी यहां भारत में ही आता है। कौन है लेने वाला, कौन देने वाला है? बाप ही ज्ञान का दान देने वाला है, और बाप ही विकारों का दान लेने वाला है। ये सब बड़ी सूक्ष्म बातें हैं जो भारत में ही होती है। तो देखो ये भारत कितना अविनाशी खंड बना हुआ है। और सभी खंड खत्म हो जाने वाले हैं, न पहले थे और न अब अंत में रहेंगे। पांच सौ वर्ष पहले अमेरिका का नाम निशान भी मनुष्यों की बुद्धि पटल पर नहीं था। 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का नाम निशान भी नहीं था। क्योंकि ये सब धर्मखंड समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। जब द्वैतवादी युग शुरू होता है तब ये धर्मखंड धीरे धीरे ऊपर आते हैं। तो समझना चाहिए कि ये ड्रामा कैसे बना हुआ है। ये बात तुम्हारी बुद्धि में है। 12-4-68 की वाणी का तीसरा पेज। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती है। इन बातों को नॉलेज ही कहें तो अच्छा ही है। ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। आत्मा को 84 जन्मों की इनकम हो जाती है। खास 21 जन्मों की इनकम और आम 63 जन्मों की इनकम हो जाती है। तो देखो ये नॉलेज लेने से बहुत भारी इनकम है। और बाप को कैसे याद करो, ये भी इनकम, ये नॉलेज भी है, याद की भी नॉलेज देते हैं ना। कैसे याद आती है, किसी को लगाव पूर्वक देखते हैं तो उसकी याद आती है ना। तो ये आंखें मीडिया बन गई। सभी इंद्रियों से जो प्राप्ति होती है तो वो इंद्रिय मीडिया बन जाती हैं। फिर याद जरूर आती है और यहां बाप की याद से तो बहुत भारी इनकम है। फिर बाप बैठे षष्ठ चक्र की भी नॉलेज देते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ये भी नॉलेज है। ये ज्ञान तुमने कभी नहीं सुना है। अभी तुम जानते हो हम जन्म जन्मांतर भक्ति मार्ग में रहे और वहां मनुष्यों द्वारा ही सुनते आए। देवदारियों से ही सुना है और यहां तुम विदेही बाप से सुनते हो। तो अभी बाप तुमको बहुत अच्छी रीति समझाते हैं कि अपन को आत्मा समझो, क्योंकि तुम आत्मा ही बाप से वर्षा लेते हो। शरीर का भान पूरा निकल जाना चाहिए। अभी सभी ब्रदर सब आपसे वर्षा ले रहे हैं ज्ञान का, पढ़ाई का, याद का वर्षा ले रहे हैं, और इस वर्षा लेने में बड़ी मेहनत भी है। माया घड़ी घड़ी हिलाई देती है और हम आत्माओं को अभी वापस घर जाना है, तो देह भान में रहेंगे तो भारी बने रहेंगे, ऊंचे धाम में आत्मा जा नहीं सकेगी, उड़ नहीं सकेगी। आत्म की स्थिति में रहेंगे तो उड़ते रहेंगे, पुराने शरीर से और पुरानी दुनिया से उपराम हो जाना है। उपराम ही क्यों कहते हैं, उपकृष्ण क्यों नहीं कहते हैं? उप माने ऊपर, राम माने राम बाप, देह सहित जो कुछ भी देखते हो वो सभी खलास हो जाना है। एक बाप की ही याद आनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की भी याद आती रहे अथवा कोई भी दूसरी आत्मा याद आती रहे। हम अभी संगम में ही ट्रांसफर होते हैं और संगम में भी कब ट्रांसफर होंगे ये बात भी बाप ही बता सकेंगे। इसका हिसाब तुम अपने आप नहीं निकाल सकते, कोई भी मनुष्य इस बात का हिसाब नहीं निकाल सकता। किस बात का? कि हम ट्रांसफर कब होंगे। सभी आत्माओं का बाप ही ये ट्रांसफर की बात भी बताते हैं। स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो भी तो एक स्कूल छोड़कर कॉलेज में ट्रांसफर होता है ना। इंतान पास किया और ट्रांसफर हुआ, यहां कौन सा इंतान है? बेसिक नॉलेज में कौन सा इंतान है? हैं? बेसिक नॉलेज में भी वही इंतान है और वही पढ़ाई है जो बोला कि आत्मा की बेसिकली सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। कोई देहदारी गुरु से नहीं सीखेंगे। तो तुम्हारा भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। जो बाप ही आकर के पढ़ाते हैं और इस इम्तिहान में किताब आदि की कोई बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। बाप 84 जन्मों का चक्कर तो समझाई देते हैं। दुनिया में तो कोई ड्रामा के ड्यूरेशन को भी नहीं जानते। लोग बेचारे घोर अंधेरे में पड़े हुए हैं। अभी तुम तो जाग गए हो। मनुष्य तो जागते ही नहीं है। तुम कितनी मेहनत करते हो जगाने की, फिर भी उनको विश्वास नहीं होता है कि भगवान आकर के इनको पढ़ाते हैं। अरे भगवान आवेंगे तो जरूर कोई में तो आवेंगे ना। उन्होंने फिर कृष्ण को पकड़ लिया है। किन्होंने? जो बेसिक अधूरी नॉलेज लेने वाले हैं उन्होंने कृष्ण भगवान यही पक्का कर लिया। जो बैठ किताब बनाई तो सोचा होगा किसका नाम देवे। अब जानते तो कुछ भी नहीं है। और फिर ये चित्र भी देखो कैसे बैठ बनाए हैं। गीता का भगवान साकार या निराकार, क्या चित्र बनाया उन्हें? बेसिक वालों ने क्या चित्र बनाया कंट्रास्ट करने के लिए? हैं? एक तरफ कृष्ण का चित्र रख दिया गीता के ऊपर और दूसरी तरफ किसका चित्र रखा? हैं? निराकार ज्योति बिंदु शिव का चित्र रख दिया। अब बताओ निराकार कैसे पढ़ावेंगे? हैं? निराकार ज्योति बिंदु पढ़ावेंगे? शरीर धारण किए बगैर पढ़ावेंगे क्या? तुम जानते हो कि वो तो कुछ भी नहीं जानते हैं। ये भी नहीं जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में कनेक्शन क्या है। कुछ कनेक्शन है या नहीं है? है? कोई कनेक्शन नहीं। अरे एक बाप के बच्चे होते हैं तो उनका आपस में कनेक्शन होता है या नहीं होता है? तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या कनेक्शन है? हैं? भाई भाई हैं। अच्छा भाई भाई हैं तो कौन बड़ा भाई है, कौन छोटा भाई है, कौन मझला भाई है? बड़ा भाई है तो उसे ताऊ कहते हैं, छोटा भाई है तो उसे चाचा कहते हैं। वो तो कुछ भी नहीं जानते। अभी बाप आत्मा को ज्ञान देते हैं और राय देते हैं कि ऐसे ऐसे करो, जो मनुष्य इन बातों को समझ जाए। तुम्हारे लिए तो बहुत समझना सहज है और समझने वाले नंबरवार तो होते ही हैं। स्कूल में भी तो नंबरवार होते हैं ना, और राजाओं में भी नंबरवार राजाएं होते हैं। तुम तो जानते हो इस पढ़ाई से तो बहुत बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है। दुनिया में 5000 वर्ष के ड्रामा में इतनी बड़ी राजधानी कभी भी स्थापन नहीं हुई। ये बात भी तुम्हारी बुद्धि में है। क्या तुम्हारी जो राजधानी स्थापन होती है, इस राजधानी में राजधानी का कार्य व्यवहार संभालने वाले, राज्य पद पाने वाले नंबरवार कितने होंगे? है? कितने होंगे? 16108 होंगे, बाकी सब प्रजा होगी। तो पुरुषार्थ ऐसा करना है जो राजधानी में हम राजा बने, ऐसा पुरुषार्थ तुम इस समय करते हो। अभी यहां करेंगे तो कल्प कल्प करते रहेंगे। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। कोई को छोटी लॉटरी मिलती है, कोई को बड़ी लॉटरी मिलती है। तो ये राजाई भी लॉटरी है ना? इनको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। जो आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसी बड़ी लॉटरी मिलती है। कोई गरीब बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, परंतु लॉटरी तो सभी को मिलती है ना? और इस समय तुम बच्चों को सारी लॉटरी बाप से मिलती है। अब जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसी लॉटरी पावेंगे। तो इस समय के पुरुषार्थ पर बहुत मदार है। बहुत माने कितना मदार है? है 84 जन्म के हिसाब किताब का मदार बन जाता है। नंबर वन पुरुषार्थ याद का है, योग बल से ही तुम स्वच्छ बनेंगे। और जो स्वच्छ बुद्धि वाले बनते हैं वो पढ़ाई भी अच्छी पढ़ते हैं। कैसे स्वच्छ बुद्धि बनती है? है? जितना साकार को पहचान करके साकार में उस निराकार को याद करेंगे तो बुद्धि स्वच्छ जरूर बनेगी, पवित्र भी बन जाते हैं। बच्चे जानते हो जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी हमको नॉलेज की धारणा होगी। बाप ज्योति बिंदु है और सभी आत्माओं से अति सूक्ष्म है। सूक्ष्म को याद करेंगे तो बुद्धि कैसी बनेगी? सूक्ष्म बुद्धि बनेगी, देह अभिमान नष्ट हो जाएगा। फिर तुम बहुतों को समझा करके प्रजा बनावेंगे। जैसे बाबा बौद्ध धर्म का मिसाल देते हैं, बौद्ध धर्म में एक ने भाषण दिया और एक ही भाषण से 60,000 कन्वर्ट हो गए बौद्ध धर्म में। तो तुम कहां भी जाओ, बल कोई भी धर्म वाला हो, जब भी तुम मिलते हो उन उन धर्म वालों से, तो उनको बाप का परिचय जरूर देना है। आगे चल करके देखेंगे कि बिना सामने खड़ा है, तो विनाश के टाइम पर हमेशा मनुष्यों को वैराग्य आ जाता है। उस समय तुमको सिर्फ समझाना है कि तुम आत्मा हो, तुम इतना बड़ा शरीर नहीं हो, अब बताओ गॉड फादर किसने कहा, शरीर ने कहा या आत्मा ने कहा? शरीर का बाप शरीरधारी होता है और आत्मा का बाप आत्मा ही होता है। तो बताओ उस आत्मा बाप को याद करो, तो वो बाप तुमको गाइड बनकर के मुक्ति धाम ले जावेंगे। बाकी आत्मा का तो कब भी विनाश नहीं होता, आत्मा अविनाशी है तो मोक्ष का प्रश्न भी नहीं उठता। हर एक आत्मा को पार्ट भी जरूर बजाना है, और आत्माएं सभी अविनाशी हैं। कोई भी आत्मा विनाश होने वाली नहीं है। हां, 5,000 वर्ष के पार्ट का विनाश हो सकता है, कोई का कम विनाश होगा, कोई का ज्यादा विनाश होगा, तो ये ड्रामा चलता रहता है। जो भी 500 करोड़ आत्माएं हैं वो सब अविनाशी हैं। आत्मा तो कब विनाश होती नहीं। बाकी वहां जाने के लिए बाप को याद करो तो फिर विनाश होंगे। फिर तुम नंबरवार घर में चले जावेंगे। ये सब बातें दुनिया के सभी लोग आखिरी जरूर समझेंगे। जो दुनिया के बड़े बड़े सन्यासी हैं वो भी समझेंगे, क्योंकि वापस तो सभी को जाना है। तुम्हारा पैगाम कि बाप आया हुआ है, ये कलयुगी दुनिया जाने वाली है, नई सतयुगी दुनिया आने वाली है, ये सात की बुद्धि में ठक्का करेगी। तब का ही गायन है, अहो प्रभु तेरी लीला, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। जानेंगे तब ही तो किसको मत देंगे ना, कि जानी हुई मत को अपने पास रख लेंगे। उनकी मत से सदगति होती है, सत्य सच्चाई को कहा जाता है, और सच ही सदगति कर सकता है, झूठा कैसे सदगति करेगा। तो जरूर वो सदगति का रास्ता बताने वाला है। ओम शांति।